ओम शांति। संगम युग वरदानों का युग है। हम बाबा के बने हैं तो अपने मन से पूछें, क्या हमने खुद को पहचाना है? आप कई बार सुनते होंगे, हमारी आदरणीय दादी जानकी जी जब क्लास में आते हैं तो पहली बात यही कहते, मैं कौन, मेरा कौन। आप कहेंगे ये तो सहज बात है बहन जी, पहले दिन ही तो आपने ये बताया था, मैं कौन, मैं आत्मा, और मेरा कौन, मेरा शिव बाबा। फिर भी दादी जी कहती हैं मैं कौन, मेरा कौन। आवाज नहीं करो, बिठाने वाले बैठने वाले बिल्कुल आवाज ना करें। तो ये मैं कौन और मेरा कौन तो संगम युग की इन घड़ियों पर, मैं आत्मा कौन हूं अर्थात मेरा पार्ट क्या है, ये तो सहज है, मैं आत्मा हूं। मैं कौन, मैं आत्मा हूं। अब मैं कौन सी आत्मा हूं, सत्युगी आत्मा हूं, कलयुगी आत्मा हूं, कौन सी आत्मा हूं बताओ। अपने आप से थोड़ा हम पूछें, मैं कौन सी आत्मा, क्योंकि हम जो बाबा के घर में आते हैं, हम यहां किस लिए आते हैं। बाबा कहता है बच्चे ये पढ़ाई है, हम यहां पढ़ने के लिए आते हैं, ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है कि आज फलाना कथावाचक, आज फलाने पंडित जी, आज फलाना कथा सुनाएंगे, गीता सुनाएंगे, प्रवचन करेंगे, या कोई राम की धुनी लगाएंगे, ये इस प्रकार से नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि चलो आज पूर्णमासी है, सत्यनारायण की कथा सुननी है, थाली में थोड़ा सा घी आटा चीनी आदि 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 लेके हम कथा सुनने पहुंच गए या मंदिर में पहुंच गए, कुछ पंडित जी को दे दिया, कुछ हमने कोई कोई को होता है गाय को खिला दिया, ये हम वो नहीं है, ये ईश्वरीय पढ़ाई है। अब एक एक बात आप सब मेरे साथ अपने अंदर देखते चलो, क्या मैंने ये समझा है ये ईश्वरीय पढ़ाई है, तो आप देखो आपके अंदर से क्या जवाब आता है। क्योंकि पढ़ाई पढ़ने वाले कैसे होते हैं, पढ़ाई में अमीर गरीब की बात नहीं होती है, पढ़ाई वही पढ़ता है जो अनपढ़ है। हम सब अनपढ़ थे, भले दुनिया की रीति से पढ़े होंगे, हो सकता है कोई डॉक्टर वकील भी हो, लेकिन स्वयं की पहचान में हम सब अनपढ़ थे। तो अब मैं आत्मा स्वयं को स्वयं देखूं, मैंने पहले पहले अपने को समझा है। जैसे छोटा बच्चा होता है, पहले पहले स्कूल में जाता है, उसको ए ए फॉर एप्पल या अ से आम पढ़ाया जाता है और उसको वो चित्र किताब में दिखाया जाता है। और जब घर आता है वो घर में देखता है आज माँ एप्पल लेके बैठी है, और अगर बच्चा गलती से कहे कि माँ ये तो आम है, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं, ये ए फॉर एप्पल। तो जो पढ़ा वही प्रैक्टिकल में करना है, जो सुना वही प्रैक्टिकल में हमें पहचानना है। ऐसा नहीं बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ अब वो एडिशन सीख गया, जमा करना सीखा, माइनस करना सीखा। अब जमा में उसने सीखा दो और दो चार है, चार में से दो गए तो दो हैं। अब वो बच्चा आपसे कोई पैसा लेता है, कोई चीज लेता है, वो कहता है दो और दो चार हैं, और आप उसको चार चीज दे देते हैं, वो कहता है नहीं मैं तो एक और लूंगा तब चार होगा, तो आप मानेंगे? आप कहेंगे नहीं दो और दो चार, तो ये देखो एक दो तीन चार। तो पढ़ाई का अर्थ है हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो बोलते हैं, फिर क्या वो हमारे अंदर उतरा है, हमने उसको समझा है? बाबा ने कहा बच्चे तुम मेरे बनते हो, और जब आप पहले पहले दिन, आज नहीं, याद करो जब आप बाबा के घर में कभी साल दो साल दस साल पहले आए थे और आपने ज्ञान को सुना समझा, और समझने के बाद एक दिन आपने भी बहुत प्यार से दिल से कहा हाँ बाबा, तो बाबा कहता है बच्चे जब पहले पहले बाबा को बच्चे कहते हैं ना प्यार से बाबा, तो बाबा उनको दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। दिव्य बुद्धि का वरदान माना हमारा ये तीसरा नेत्र खुल जाता है। अब हम देखें मेरा ये नेत्र खुला है, मुझे पक्का हुआ मैं आत्मा हूं, क्योंकि वो जो एक कहानी सुनते थे ना कि चार अंधे थे और उनको भेजा गया, समझाया गया कि हाथी कैसा होता है, और हाथी के आगे उनको ले गए। अब अंधा है उसको दिखाई तो दे नहीं रहा है, तो अब जिसने उसकी पीठ पर हाथ फेरा उसने कहा हाथी एक दीवार जैसा होता है, जिसके हाथ में सूंड आ गई उसने कहा हाथी जो है ना एक रस्सी जैसा लंबा लंबा है। जिसके हाथ में उसके पांव टांग आई कहने लगा नहीं नहीं हाथी जो है ना पिल्लर जैसा है, खंबे जैसा है, क्योंकि उसका हाथ टांग पर गया था। और जिसका हाथ कान पर गया, हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं ना, उसने कहा नहीं नहीं तुम सब गलत हो, हाथी तो कैसा होता है पंखे जैसा होता है। उनको क्योंकि दृष्टि नहीं थी, उनको महसूस कराया गया हाथी कैसा होता है। अब हम सब ने भी सुना मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं, हमने ये सुना या हमने इसको महसूस भी किया? किस स्थिति में है, क्या कहेंगे? क्या मैंने ये महसूस किया है एक है, हो सकता है आप में से कोई 10-20-30 साल वाले पुराने भी हों, कहेंगे बहन जी आप कौन सी नई बात सुना रहे हैं, हम तो कितनों को कोर्स कराते हैं, कितनों को ये संपर्क में आते हैं, हम तो कितनों को ज्ञान सुनाते हैं, हम सबको बताते हैं। आत्मा यहां भृकुटी के बीच में है और एकदम ज्योति बिंदु है। बिल्कुल सही बात है, आप समझाते हैं, आप लोगों को बताते हैं, लेकिन आज प्रश्न ये है, क्या मैंने समझा है आत्मा यहां है? क्या कहेंगे? कौन कौन कहते हैं हाँ हमने महसूस किया है, समझा है, आत्मा मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा है। बेशक हाथ उठाइए जो कहते हैं हमने समझा। एक दूसरे को देख के नहीं उठाना, लेकिन हाँ अगर सचमुच आपको ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, शर्माना नहीं, तो हम आपको एहसास भी कराएंगे। तो हाथ उठाइए भाई जो कहते हैं हमने इसको महसूस किया है। ठीक है, नीचे करें हाथ। तो सबने समझा देखा कि हम कहते हैं मैं आत्मा हूं, फिर बाबा हमें क्या कहता है? बच्चे अगर आप आत्म अभिमानी बन जाएं, माना आपकी दृष्टि आत्मिक हो जाए, आपकी वृत्ति आत्मिक हो जाए, आत्मिक दृष्टि और वृत्ति माना उसका जो भाव है, भावना है, वो भाई भाई की समभाव हो जाएगा, समभाव का मतलब ये नहीं है कि हम समझेंगे नहीं कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन भाई है, कौन बहन है। ये समझते हुए, देखते हुए, ये बहन है, ये भाई है, मेरे अंदर कौन सा भाव होगा? हम आत्मा के नाते भाई भाई है, बाबा ने यही कहा है ना। तो आत्मा का एहसास होना माना मेरे अंदर सदा ये भाव रहे कि मैं आत्मा कौन हूं। हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, केवल यहां मधुबन में नहीं, यहां तो पक्का होना आसान भी है, अभ्यास भी करना, लेकिन जब हम परिवार में हैं, जहां एक छोटा बच्चा 2, 4, 10 साल का भी है, जहां पति भी है तो पत्नी भी है, जहां सासू भी है तो ससुर भी है, अनेक रिश्ते नाते हैं, क्या मेरी ये दृष्टि बनी है? आत्मा के नाते हम भाई भाई शिव बाबा के बच्चे हैं। ये दृष्टि बनाने के लिए साधना करनी पड़ेगी, और हमारी ये दृष्टि नहीं बनी है। हो सकता है आप में से कोई खड़ा हो जाए, कहे कि बहन जी आपने कैसे कह दिया, और मेरी तो दृष्टि एकदम भाई भाई की है। हो सकता है, कोई चैलेंज नहीं है, इनकार नहीं करते हैं। अब चेक करो, मैं कहती हूं मेरी दृष्टि भाई भाई की है, सचमुच मैं अपने अंदर में इतनी एक्टिव अलर्ट हूं, हमने साकार में बाबा को देखा, बाबा की ये साधना, बाबा का ये अभ्यास प्रैक्टिकल में सबको महसूस कराता था, जो जाता था ना। कई लोग कहते हैं अरे बाबा के सामने जाते थे ना सब कुछ भूल जाते थे, भूलते नहीं थे एक्चुअली, लेकिन बाबा की अपनी स्थिति ऐसी अशरीरी स्थिति थी कि जो जाता था वो जैसे मैग्नेट के पास आने से लोहा मैग्नेट उसको खींचता है, तो बाबा भी अशरीरी तो हम भी बाबा के आगे आते ही अशरीरी हो जाते थे, ये देह का भान भूल जाता था। अब जब देह का भान भूल गया, मेरे पास समस्याएं कौन सी थी, शायद परिवार की, शायद व्यापार की, शायद पैसे की, शायद नौकरी की, शायद बच्चों की। अब मैं अशरीरी हो गई आत्मा। आत्मा का कोई बच्चा, बेटा, बेटी, बहू, सासू है क्या? ये सब रिश्ते तब हैं जब आत्मा इस देह भान में आती है। रिश्ते इस देह के साथ हैं। आत्मा का रिश्ता जब आत्मा देह में है तो हर कोई अपने अपने को देखो, आप कम से कम भी 25-30 पार्ट प्ले कर रहे हैं एक ही टाइम में। कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? आप यहां बैठे हो, मान लीजिए आपका परिवार भी आपके साथ लौकिक परिवार है। आप परिचय कराते हैं, बहन जी ये मेरी लौकिक साथी है, ये लौकिक बच्चा है। हो गए ना दो रिश्ते फटाफट। ये मेरा लौकिक भाई है, तीन रिश्ते। ये हमारी जो है अलौकिक डिवाइन टीचर है, चार रिश्ते। आप देखो एक एक व्यक्ति के कम से कम भी 25-30 रिश्ते वो एक टाइम में निभाता है। किसी का बाप, वही व्यक्ति किसी का बाप है, किसी का भाई, किसी का चाचा और किसी का मामा। तो कौन पार्ट प्ले कर रहा है? ये आत्मा इस शरीर द्वारा पार्ट प्ले कर रही है। अब क्या मेरे अंदर ये एहसास है, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा ये पार्ट प्ले कर रही हूं? अगर हमारे अंदर ये एहसास हो जाए, मैं आत्मा शरीर द्वारा पार्ट प्ले कर रही हूं, तो हमारी अपनी कर्म इंद्रियां स्वतः ही हमारे वश में हो जाएंगी। अभी तो हम इंद्रियों के वश में हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, अरे आज ओवर ईटिंग हो गई। वो उसके साथ बैठे थे ना, और खाना भी थोड़ा टेस्टी था, मेरे चॉइस का था, थोड़ा ज्यादा खाया गया। क्योंकि आपने पहले ही कह दिया उसके साथ, माना दे भान, ज्यादा खाया गया। फिर आज किसी से दिन में थोड़ी सी खिटपिट हो गई, अरे मैं चाहती तो नहीं थी मैं बोलूं, गुस्सा करूं, पर मैं उस समय अपने आप को रोक नहीं पाई और मुझे गुस्सा आ गया। क्योंकि मुझे ये अभ्यास पक्का नहीं है मैं आत्मा। अगर सामने वाला कोई गलत भी कुछ कह रहा है, जो उसे कहा गया उसने नहीं माना, जैसा हमने चाहा वैसा नहीं किया, तो बाबा ने मुझे क्या कहा है? बच्चे साक्षी होकर, साक्षी दृष्टा बनो, साक्षी होकर इसके पार्ट को देखो। रावण बहुत विद्वान था, शिव भक्त था, तपस्या की थी, शिव से वरदान लिया था, लेकिन काम क्या किया, काम क्या किया? सीता को उठा के ले गया। पूरी रामायण पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और श्री राम ने क्या किया? जो भी युद्ध हुआ, जो कुछ भी हुआ, हनुमान जी गए, लक्ष्मण जी गए, फलाना गया, राम जी शांति में, वो कहीं नहीं गया। सीता उसकी चोरी हुई है, भटक दूसरे रहे हैं, वो शांति में बैठा। हनुमान कौन था, लक्ष्मण कौन था? लक्ष्मण माना जिसके मन को लक्ष्य मिला हुआ है। अब बाबा ने लक्ष्य दिया हुआ है, बच्चे तू आत्मा है, लेकिन मुझे पक्का नहीं है, तो मेरा मन भटक रहा है। लक्ष्मण जी इधर से उधर, उधर से उधर भटक रहे हैं। राम को याद करना है, लक्ष्य मिला हुआ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, लक्ष्य याद नहीं है। आज अगर आपने सवेरे अव्यक्त मुरली बाबा की सुनी होगी, बाबा ने उसमें कहा है जिनको सदा स्मृति है वो सदा सुहागिन है। तो कौन सी स्मृति? हमें कोई बाबा 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 ऐसी माला नहीं जपनी है। ये स्मृति कर्म करते हुए मैं आत्मा हूं, देखते हुए मैं आत्मा हूं, सुनते हुए मैं आत्मा हूं। अभी भी आप पाएंगे कई आपके आसपास बैठे हुए थोड़े से ऐसे सुस्त होंगे, ढीले से बैठे। कोई कोई तो हो सकता है ऐसे नमस्कार भी कर रहे हो। ऐसा नहीं वो थके हुए हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसने आज दिन में आराम नहीं किया था, लेकिन उसके मन का संकल्प ढीला है। जो लक्ष्य मिला हुआ है वो ढीला है। मैं बहुत से काम करते हुए यहां आके बैठ गई, लाल लाइट है, आप सब भी अच्छा, चलो बाबा को बस बैठी, आज मैंने दिन में आराम नहीं किया, बैठी बाबा को याद करने, और बैठते ही यूं हो रही, क्योंकि मेरी स्मृति पक्की नहीं है। और बाबा ये कहते हैं बच्चे अगर आपकी स्मृति पक्की हो और आप एक बार संकल्प करें मैं आत्मा हूं, तो आपकी सारी थकान उतर जाएगी। क्या कभी मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है? कि मुझे थकान है, शरीर की कोई व्याधि है, कष्ट है, सिर में दर्द है, कान में दर्द है, और मैंने संकल्प किया मैं आत्मा हूं, और मुझे उससे थोड़ा सा राहत मिली। आप प्रैक्टिकल में देखते होंगे, कई बार आपको भी ऐसा अनुभव हुआ होगा, डॉक्टर आपको कहता है आप अपने खून की जांच करवा के आइए, आप वहां जाते हैं और अपना ब्लड देते हैं, और कोई कोई तो अपने साथ एक दो लोगों को ले जाते हैं, कहते भाई मुझे तो बहुत डर लगता है जब डॉक्टर यूं सुई लगाएगा तो, और वो जब लगाएगा ना सुई तो वो उसका मुंह इधर और इतनी जोर से, अरे दर्द नहीं करना, एकदम हमारी जो कॉन्शियस है, शब्दों की बात नहीं है, इतना हम इस देह में फंसे हुए गहराई से, और अगर मुझे अपने को आत्मा समझने का अभ्यास है, मैंने तो देखा है कहीं कोई 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 तो आजकल तो वो किसी को होता है ना शुगर होती है तो वो ऐसा जरा सा प्रिक करते हैं और टेस्ट कर लेते हैं, वो प्रिक करते हैं उसमें भी हाय ऐसा करने लग जाते हैं, जरा सा प्रिक किया। अब कईयों को अनुभव होगा या देखा होगा, खुद को नहीं होगा, कितनी सी वो हल्की सी प्रिक होती है उसमें भी हम ऐसे ऐसे करते हैं। तो मैंने अपने अंदर आत्मिक बल कितना जमा किया, बाबा ने कहा ज्ञान बल, योग बल, धारणा का बल, सेवा का बल। लेकिन हमारा अनुभव क्या है? हम 10 साल से 20 साल से ज्ञान तो सुनते हैं, ज्ञानी तो हैं, हम सब बाबा के बच्चे ज्ञानी हैं, है ना, सब ज्ञानी है ना, चाहे कोई टूटी फूटी भाषा में कोई अनपढ़ माता ज्ञान सुनाती हो, पर ज्ञान सुनाती है। ज्ञानी है, लेकिन ज्ञान का बल, ज्ञान की शक्ति मेरे अंदर है। योग का बल मेरे अंदर है। ये हमें, हम मधुबन में आए हैं ना, कोई कल आया होगा, कोई आज आया होगा, तो ऐसे नहीं इधर से उधर घूम लिए, चलो ये ओम म्यूजियम देख लें, अच्छा चलो सोलार देख लें, अच्छा चलो। कई बार मैं पूछती हूं, क्या किसी ने आपस में ये चर्चा की कि चलो आज सवेरे जो बाबा ने कहा है अपन 10 मिनट बैठ के अभ्यास तो करें, आज फलाने भाई बहन ने ये क्लास कराई थी और उसमें ये पॉइंट बहुत अच्छी थी, आओ आकर के 10 मिनट 15 मिनट अभ्यास करें। बात सुन ली, बात बहुत अच्छी लगी, अरे अभी पता पड़े ना फलाने की क्लास है, अरे चलो चलो वो फलाना भाई बहन, क्लास तो बहुत अच्छी है और आपने सर्टिफिकेट भी दे दिया, लेकिन अपने आप को सर्टिफाई कहां तक किया? तो हम बाबा के घर में आए हैं, ज्ञान बल योग बल अपने अंदर जमा करें। पहला पाठ, बहुत पहली बात, मैं आत्मा हूं, ये तब हमें पक्का होगा जब हम बाबा के बच्चे अंतर्मुखी बनेंगे, साइलेंस में रहेंगे। लेकिन हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, दुनिया का जो वातावरण है, बुरा नहीं मानना, लेकिन अंतर्मुखी तो अब छोड़ो, मेरे को लगता है धीरे धीरे ये शब्द भी लोप हो जाएगा। हम तो इतने बाहर मुखी हैं, बात नहीं पूछो। कभी कभी तो देखते हैं कोई व्यक्ति अकेला जा रहा है पास से, अरे ये तो अकेला व्यक्ति किससे बातें कर रहा है, वो अपने फोन पे लगा हुआ है, कान में कुछ वो लगाया हुआ है, फोन जेब में है, बोलता जा रहा है बस। और जो बोल नहीं रहा है वो क्या कर रहा है, उसने पता नहीं क्या लगाया हुआ है, कोई म्यूजिक है क्या है, वो सुनता जा रहा है या किसी की बातें सुन रहा है। स्वच्छता की बात करते हैं, पॉल्यूशन की बात करते हैं, सारा दिन हमारा माइंड, हमारा मन और बुद्धि कितना पॉल्यूट हो रहा है। तो ये ईश्वरीय पढ़ाई है, मेरा जो पहला पाठ है, वो जो पहला शब्द है, मैं आत्मा हूं। बहुत से भाई बहनों ने हाथ उठाया, बहुत से नहीं उठाया, कोई बात नहीं है, अभी से ये महसूस करना शुरू करें, मैं आत्मा हूं। मेरी ये स्मृति पक्की हो जाए, बाहर का तिलक लगाने की जरूरत नहीं है, हम कोई वो पंडित या वो वाले ज्योतिषी वैसे लोग नहीं है, लेकिन हमारा सूक्ष्म आत्मिक तिलक हर घड़ी लगा रहे, जिसको देखे आत्मा देखे। हम लोग जब ज्ञान में आए थे, आयु में चाहे छोटे बच्चे थे, जब एक दूसरे से हम लोग मिलते थे, पहले हमारे यहां ओम शांति का संबोधन नहीं था। आज तो एक दूसरे से मिलते हैं ना, यहां से भी बाहर निकलेंगे तो बहुत से भाई बहन कहेंगे ओम शांति दीदी, ओम शांति दीदी। पहले यहां ओम शांति नहीं कहते थे, हो सकता है आप में से कई पुराने बैठे हो, उनको मालूम भी हो, तो आप कहेंगे क्या कहते थे। जब हम आपस में मिलते थे, मान लीजिए आप आए मैं आई, बस ऐसे एक दूसरे को देखते थे, आत्मिक दृष्टि से, दृष्टि का आदान प्रदान होता था। ओम शांति नहीं कहते थे, ओम शांति का संबोधन हमारा बहुत बाद में है, 60 के भी बाद में, 1960 के बाद का है। तब बाबा ने कहा, बाबा से किसी ने पूछा और बाबा ने कहा, बच्चे हाँ जब मिलते हैं तो ओम शांति कह सकते हैं। कभी मुरली में भी, पिछले काफी 4-5 महीने मुरली में था भी, बच्चे आपस में मिलते हैं ना तो ओम शांति। लोक संग्रह अर्थ भी, क्योंकि फिर जब भी पहले तो संख्या थी ही नहीं, थोड़े से लोग होते थे, और ब्रह्मा कुमारी का विरोध भयंकर, तो लोग कहते थे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं, आंखों में आंखें डालते हैं। तब हुआ कि ओम शांति कहे एक दूसरे को। बहुत सी मुरलियों में बाबा कहते हैं, बच्चे ओम शांति का मतलब ही है, ओम माना मैं आत्मा, शांति मेरा स्वधर्म है। अब हमारे यहां ये शब्द एक प्रचलन में आ गया है, अज्ञानी दुनिया वाले भी कहते हैं, कहते अच्छा आप ओम शांति वाले हो, हम बड़े खुश होते हैं, हम कहते हैं हाँ हम ओम शांति वाले हैं। तो जरा मन से पूछना, मैं ओम शांति वाली हूं या ओम अशांति वाली हूं, क्या विचार है? पूछो अपने मन से। हो सकता है मैं अभी बहुत शांत मन से बैठी हूं, कुछ नहीं ऐसा वैसा, मैं तो फिर भी बोल रही हूं, आप सब चुप बैठे शांत, लेकिन आप अभी अभी वहां गए थे, आपने पानी पिया या चाय पी और आपको अपनी मन पसंद की नहीं मिली, या किसी ने आपके ऊपर थोड़ा पानी गिरा दिया और आपके मन में अभी भी वही विचार चल रहा है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, वही फीलिंग चल रही है, क्या बेकार, पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं, इतना भी पता नहीं है पानी कैसे पीना है, देखो मैं वहां गई मेरे पे गिरा, और वही संकल्प उस हलचल में मैं अभी तक हूं, तो आप बताइए मैं ओम शांति हूं या ओम अशांति हूं? माताएं क्या विचार है? तो हम ओम शांति वाले हैं या ओम अशांति वाले हैं? देख लो, पक्का कर लो। भाई भाई ओम शांति या ओम अशांति? ओम शांति कहने से शांति नहीं होगी, ये साधना है। मैं आज ट्रेन से आई, वहां कुली से कुछ चिक चिक हो गई, कोई पैसेंजर था उसके साथ कुछ खिटपिट हो गई। बाबा कहते हैं बच्चे जो बात जहां हुई फुल स्टॉप। हम तो जब तक आके 10 लोगों को सुना नहीं देंगे, अरे आज ऐसे ऐसे हुआ, अपनी तो छोड़ो, चलो मैं तो ठीक थी, मैं एसी में बैठी थी, सेकंड एसी में, फर्स्ट एसी में, थर्ड एसी में, भाई हमारी तो आज यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे लोग थे, हमने ज्ञान की सेवा भी की, लेकिन हमारे से अगले कैबिन में लोग बैठे थे ना, उसमें शायद एक व्यक्ति बहुत खराब था, इतना उसने सवेरे से शाम तक झगड़ा किया, तंग किया। अब देखिए झगड़ा दूसरे का हो रहा है, मेरा नहीं हुआ ना, मेरे ग्रुप का हुआ, लेकिन उसका प्रभाव यहां पर इतना है, मैं यहां आकर जब तक अपने पहचान वाले 10-20 लोगों को न सुना दूं, अरे हमें तो बाबा ने बहुत बचा लिया, पर वो अगले कोच में था ना, बताइए इसको फुल स्टॉप कहेंगे? कहेंगे? ये हम इतना बाहर मुखी बन गए हैं, यही तो आज दुनिया में हो रहा है, ये सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप वायरल हो रहा है मैसेज, इतने हम बाहर मुखी हैं, हमारा मन एक सेकंड भी शांत नहीं है। तो अच्छा जरा एक सेकंड आप सब सीधे होके बैठो, सब अलर्ट होके बैठो, उससे पहले भाई लोग थोड़ा अपनी लाइनें ठीक कर लो, भाइयों को जिनको जगह ना हो इधर आगे भेज दो, बहुत जगह, लाइन ठीक करके बैठो ताकि और भी बैठ सके। हाँ ऐसे लाइन बना के बैठो, लाइन अपने तो विद्यालय का बैठक इतनी अच्छी है, ईश्वरीय पढ़ाई में हम इतना अच्छा बैठते हैं, थोड़ा सा टाइट होके आप बैठिए इधर हो जाओ थोड़ा, हाँ, ताकि और लोग आके बैठ सके। लाइन में बिठाइए सबको, बस ठीक है। अब जो आए उनको इधर बिठाते रहिए। चलिए तो एक सेकंड कोई इधर उधर नहीं देखना है, कोई आए कोई जाए, कोई उठे कोई बैठे, एक सेकंड के लिए अभी तक की मेरे मन में जितनी भी घटनाएं हैं जितनी भी बातें हैं जितनी भी फीलिंग्स हैं सब पर फुल स्टॉप। किसने तंग किया, किससे नहीं बनती, फुल स्टॉप। स्वयं स्वयं को ये डायरेक्शन दें, मन ही मन, सचमुच मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा भ्रिकुटि के बीच में विराजमान हूं, महसूस करें मस्तक के बीचों बीच भ्रिकुटि में मैं आत्मा शुद्ध पवित्र आत्मा विराजमान। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा शिव बाबा की संतान हूं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बहुत लाडला प्यारा बच्चा। कुछ क्षणों के लिए ये सुंदर एहसास अनुभव करें, सर्वशक्तिवान सर्व गुणों के भंडार शिव बाबा के सन्मुख मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा विराजमान। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा मुझ आत्मा का हर संकल्प हर श्वास एक सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ जुड़ा हुआ है। अति सूक्ष्म आत्मा, आंख खोलकर बैठे, बहुत नेचुरल रूप में खुली आंखें सामने देखें, अंदर ही अंदर महसूस करें मैं शुद्ध पवित्र शांत आत्मा हूं। अलर्ट रहें, दृढ़ संकल्प करें मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों के भंडार, शिव बाबा का लाडला बच्चा, रिलैक्स। ये एक गहरी साधना है, आप इसको प्रारंभ करें, और ये तब हो सकता है जब हम अपने को अंतर्मुखी बनाएं। हम भक्ति मार्ग में व्रत आदि रखते आए, रखे ना आप सबने व्रत, आज भोजन नहीं खाएंगे, आज नमक नहीं खाएंगे, आज पानी नहीं पिएंगे, अनेक प्रकार के व्रत रखे होंगे। क्या आप सोच सकते हैं अभी हमें कौन सा व्रत रखने की जरूरत है? कोई सोच सकते हैं? आज 3 तारीख है, 3 है ना, कल 4 और 5 को बाबा आएंगे और 6 को कोई जाएंगे, कोई रहेंगे। आज का दिन तो गया, फिर भी अभी के बाद भी, क्योंकि अभी भी 10-11 बजे तक आप इधर उधर जाते रहेंगे, तो आज का दिन भी है। तो 3, 4, 5, 6, 4 दिन कोई व्रत रखेगा आप में से तो आपको भगवान मिल जाएगा। कौन सा व्रत? आप कहेंगे बहन जी व्रत तो बताओ पहले। वो व्रत है कि मुझे 4 दिन इस मोबाइल को, व्हाट्सएप को टच भी नहीं करना है, इसकी छाया भी मुझ पे ना पड़े। ताली की बात नहीं है, ताली की बात नहीं है, नो। ये व्रत कौन कौन महावीर रख सकते हैं? ईमानदारी से, मैं आपको नहीं जानती हूं, मैं कोई आपको चेक नहीं करूंगी, ये आपका अपना दृढ़ विश्वास है, आपकी हिम्मत है आप बेशक क्लास के बाद आपको 10 मिनट 15 मिनट आपको घर में इंफॉर्मेशन देना है, किसी को कुछ जरूरी कहना है, कर लेना। उसके बाद इस मोबाइल की मुझे शक्ल ही नहीं देखनी है। इसका मतलब ये नहीं आप कहीं डस्टबिन में फेंक दे, लेकिन मेरा भाव समझा। आप क्लासेस में बैठे होंगे, आपका फोन टन टन करता रहता है, वाइब्रेशन वाइब्रेट जूम जूम होती रहेगी, फिर निकाल के यूं देखते रहे। क्या हम ये व्रत रख सकते हैं? और उसमें तो चाहे भाई हैं चाहे माता हैं, कोई भी पीछे नहीं है। अगर कोई कॉल नहीं होगी तो व्हाट्सएप चले हुए हैं, और कुछ मुझे अच्छा मैसेज आया तो मैंने उठा के 10 लोगों को चेप दिया। अब अपने दिल से पूछिए, क्या मैं 4 दिन ये व्रत रख सकती हूं, रख सकता हूं? आप हाथ उठाएं या ना उठाएं, अपने दिल में ये हाथ उठाइए और महसूस करके देखिए 4 दिन। सचमुच हमारा ये ब्राह्मण जीवन कितना सुंदर, आज बाबा की मुरली में था, राज मिला, भाग मिला और भगवान मिला। क्या मुझे मिला है? मुझे खुशी। जब हम योग में बैठते हैं तो केवल ये नहीं कहना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मकान बनाते हैं ना, आगे हम लोग ये बहुत सुनाया करते थे, मकान बनाते हैं ना, ईंट पर ईंट रखते जाओ तो मकान बनेगा? तो क्या करना पड़ेगा? ईंट पे ईंट ही तो रखी हुई है। हाँ, सीमेंट लगाना पड़ता है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं, ईंट पे ईंट रख रहे हैं, लेकिन मैं उस प्यार के सागर का, मैं भी एक बहुत लाडला बच्चा हूं, प्यारा बच्चा। बाबा तो हमें कहते थे बच्चे तुम नूरे रतन हो। जब तक ये प्रभु प्रेम का सीमेंट हमारे अंदर नहीं लगेगा, आपको योग का कोई अनुभव नहीं हो सकता। आप व्हाट्सएप में किसका मैसेज पहले देखते हो? आते होंगे ना आपको कई व्हाट्सएप मैसेज। किसका देखते हो? मान लो 10 लोगों के मैसेज आए हैं, आप पहले किसका देखेंगे? जो आपका बहुत नियर एंड डियर है, भाई इसने आज क्या भेजा है। बाकियों का हो सकता है आप कल देखें, आज टाइम ही ना मिले। अब मेरा दिल दिमाग उस व्हाट्सएप में लगा हुआ है, भगवान प्यार की बरसात कर रहा है, तू प्यार का सागर है। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, लेकिन हम कौन सी स्थिति में है? हम तो इस स्थिति में है, सारी दुनिया मिली, तू मिल या ना मिल, ऐसा ही है ना प्रोग्राम? तो सारी दुनिया मिली, व्हाट्सएप मिला, मैसेज मिला, बाकी तू मिल या ना मिल कोई चिंता नहीं। तो मीठे भाई बहनों, थोड़ा जो मधुबन में आए हैं ना, ये खाली वो भक्ति वाली तीर्थ यात्रा नहीं है। कोई कोई पूछते हैं बाबा आएगा, अरे बाबा आए या ना आए, मैं किस लिए आई हूं? मैं बाबा का अनुभव करने आई हूं, बाबा से शक्ति लेने आई हूं। अब मेरा दिल दिमाग तो मेरे फोन में है, व्हाट्सएप में है, तो शक्ति कौन दे रहा है मुझे? शिव बाबा दे रहा है या उसका रेडिएशन मेरे पर और भी साइड इफेक्ट कर रहा है? कोई आपका ऐसा इमरजेंसी कॉल है? होता नहीं है, मैंने तो कभी किसी से नहीं सुना बातें करेंगे, फोन अटेंड करेंगे। इमरजेंसी कॉल आया ऐसा आज तक नहीं है। इमरजेंसी कॉल भी किसको कहते हैं। उस भगवान के इतने प्यार भरे, वरदानों भरे कॉल हमें आ रहे हैं, हम उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। बाबा की याद भी आए, बाबा आप बहुत अच्छे, फिर लग गए किसी उसमें, कॉल रिजेक्ट किया ना। अंदर ही अंदर एक कॉल आया, बाबा चलो अच्छा ये वाला तो जरा गाना सुन लूं, ये वाला तो मैसेज पढ़ लूं। बाबा को कहते हैं बाबा तू बैठ जा जरा, मैं अभी बाद में आती हूं। अब बताइए बाबा वरदान देगा। फिर हम कहते हैं ये मधुबन वरदान भूमि है, हम वरदान भूमि पर आए हैं। और फिर जाने के बाद कहते हैं वहां क्लासेस तो बहुत अच्छी हुई, बाबा ने शक्ति तो बहुत दी, पर मैंने क्या किया, मुझे मिली। शक्ति मिलना माना मेरे संकल्प परिवर्तन हो जाए, शक्ति माना मेरा संस्कार स्वभाव परिवर्तन हो जाए। वहां जाने के बाद हम फिर वही के वही। ऐसा नहीं कि मधुबन में आए हैं तो व्हाइट ड्रेस पहन ली और वहां गए तो रंगीन। व्हाइट और रंगीन का डिफरेंस नहीं करना है। लेकिन अपने मन के अंदर इतना प्रभु प्रेम की शक्ति भरनी है, जो बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहता है बच्चे, जब बच्चे दिल से कहते हैं ना बाबा, बाबा फट से हाजिर हो जाता है। हम तो बाबा कहते ही नहीं है दिल से। कोई भी बात होगी, कोई प्रोग्राम होगा, कुछ ऊपर नीचे हो गया, कोई बीमार हो गया, पहले तो हम सब तरफ फलाने को कहो, फलाने को कहो, वो डॉक्टर के, फिर बाद में हाँ बाबा तू बहुत, अरे पहले उसको इन्फॉर्मेशन देनी थी, बाबा ये हो रहा है, अब आप बताओ क्या करें। आपको बाबा इतना एक्यूरेट टच करेगा। बहुत सी मुरलियों में बाबा कहते हैं बच्चे मुझे बांधो, साकार मुरलियों में है, बच्चे मुझे प्यार से बांधो। रस्सी से बांधने की बात नहीं है, वो तो ज्योति स्वरूप है। प्यार से बाबा को बांधो, बाबा बस आप मेरे हो। इस बाबा के मंत्र को, जैसे दुनिया में आप कहते थे ना गुरुजी मंत्र दे दो, बाबा ने हमें इतने मंत्र दिए हुए हैं, पर हम बाबा के बच्चे कभी उनको सिद्धि आज तक ना हमने ली है ना उनका एक्सपेरिमेंट किया है। आज ये मंत्र पक्का कर लें, कौन सा, मेरा बाबा। गाना मत गाना, मेरा तो शिव बाबा एक, मेरा बाबा आ गया, गाने की बात नहीं, दिल में देखो ये धुन बज रही है, मेरा बाबा है। ऐसे नहीं यहां से उठे वहां बाहर गए, मेरा बेटा ऐसा है, आपको पता है मेरा बेटा अभी अमेरिका जा रहा है। क्या बात हम कर रहे हैं, हम कहां आए हैं। अरे मैं तो बहुत मुश्किल से एक दिन के लिए बस बाबा से मिलन, मैंने सोचा पिछले साल भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, आऊंगा तो रह जाएगा। अरे मुझे तो दो दिन के बाद शादी में जाना है। आप कहां हैं, मीठे भाई बहनों, एक एक संकल्प, एक एक श्वास को आप सफल करें। रात को बैठ के चार्ट नहीं लिखना, हाँ आज दिन भर गुस्सा तो नहीं किया, हाँ दो घंटे में बाबा के कमरे में बैठी थी, ये चार्ट नहीं। श्वासों श्वास चार्ट चेक करो, ये श्वास किसकी याद में जा रहा है, बाबा बाबा। हो सकता है किसी को कोई तकलीफ भी हो, किसी के घर की कोई समस्या भी हो, किसी का बच्चा किसी मुसीबत में भी हो तो भी आप बाबा से, ऐसे नहीं बाबा उसको ठीक कर दो, बाबा ठीक नहीं करता है, लेकिन हाँ एक बार बता दीजिए बाबा ये बात है, फिर आप जानो, बस बता दो, बताने में हर्जा नहीं है। पर ऐसे नहीं शिव बाबा मैं तेरी संतान हूं, बाबा वो मेरा बच्चा है ना, वो थोड़ा नौकरी में सेट हो जाए। अब आप बताइए ये योग किसके साथ है, शिव बाबा के साथ या बच्चे के साथ? आप कहेंगे बाबा ने तो कहा है ना शुभ भावना का दान दो, ये शुभ भावना नहीं है। शुभ भावना ये है मैं किसी भी स्थिति परिस्थिति में हूं, मेरे से जुड़े हुए मेरे बच्चे भाई बहन किसी भी स्थिति परिस्थिति में है, बाबा ये बात है, अब आप जैसा चाहे बस। बाबा भगवान को मेरी रिकमेंडेशन चाहिए, हाँ मेरी सिफारिश चाहिए कि बाबा ऐसा कर दो? वो भगवान है, सर्वशक्तिवान है। फिर कई बार हम सोच हमें तो बाबा ने मेरी तो सुनी नहीं, उसका फलाने का तो देखो इतना अच्छा जॉब मिल गया, हम भूल गए मेरे कर्मों की कहानी मेरे साथ है, ये कर्म क्षेत्र है। अगर मैं अभी से दृढ़ता से ये संकल्प कर लूं अब मुझे एक एक श्वास बाबा की याद में बिताना है, तो हम सिर्फ ये जन्म नहीं अपने 84 जन्मों को बदल सकते हैं, 84 जन्मों का भाग्य ले सकते हैं। तो आज बाबा ने कहा राज भाग और भगवान, तो आप भाग्य विधाता के दर पर आए हैं, केवल उसके दर पर नहीं आए। बाबा ने कहा बच्चे तुम अधिकारी बच्चे हो, लेकिन अधिकारी बच्चे वो हैं जिन्होंने अपना अधिकार बाबा पर रख लिया है, बाबा बस आप मेरे हैं मुझे क्या चाहिए, अब आप चलो मेरे संग संग। आप मेरे सच्चे साथी हैं। तो इस तरह से अभी 4 दिन अपना एक एक श्वास एक एक सेकंड सफल करें। भाइयों को तो कईयों को अभ्यास होता है अपनी पॉकेट में वो छोटी सी डायरी रखते ही रखते हैं, कहीं कुछ खर्चा हुआ कुछ हुआ लिखते रहते हैं, किसी से मिलना है लिखते रहते हैं। अपने पास एक डायरी रखो, लिखो मेरा ये सेकंड कहाँ गया, बाबा की याद में, बाबा बाबा बाबा। तो वरदाता के घर में भाग्य विधाता बाबा के घर में आए हैं, अपने भाग्य रूपी झोली को केवल एक जन्म नहीं 84 जन्मों के लिए भर के जाना, तब कहेंगे ज्ञान का बल आत्म शक्ति। अभी तो सिर्फ आत्मा की बात की है, आप सोचो इससे आगे, बस मैं आत्मा हूं ये पक्का कर लो, शांत स्वरूप आत्मा और उस सर्वशक्तिवान का बहुत लाडला बच्चा। आप प्रभु प्रेम से अपने आप को जरूर भरिए, आप कितना भी योग लगाएं। कोई कोई कहते हैं बहन जी अच्छा वो बिंदु रूप स्थिति और फलानी स्थिति, अरे मीठे भाई बहनों वो तो बहुत बाद की बातें हैं, वो स्थितियां तब बनेंगी जब मेरा मन बुद्धि उस प्रभु के प्यार में भीगा हुआ होगा। तो अपने मन बुद्धि को प्रभु प्रेम में इस बार भिगो के जाइए, स्वयं को जागृत कीजिए। बाबा ने आप सबको वरदान दिया हुआ है 3रे नेत्र का, इसको खोलिए, आप खोल नहीं रहे, बाबा ने तो दे दिया है। जैसे कोई कोई आलसी होता है ना, टाइम देख 4 बज गया 2 मिनट और सो लेती हूँ, 4:15 कोई बात नहीं 15 मिनट और, बाबा अच्छा 4:30 उठा देना फिर मैं अमृत वेला करूंगी, फिर क्या होता है फिर 6 बजे आंख खुलती है। तो बाबा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है, इस बार आंख खोल के जाइए, बस मैं और मेरा बाबा। बांधिए बाबा को अपने साथ, भाग्य विधाता को अपने साथ, तो बताइए आपको क्या कमी रहेगी जब आप भाग्य विधाता को अपने साथ रख लेंगे। तो मैं और मेरा भाग्य विधाता बाबा, बस। और आपको अच्छा लगे तो अब चार दिन अपने मोबाइल्स को बाय बाय। माताएं ठीक है ये बात? ठीक है भाई? ठीक है? ओके, ओम शांति। बैठो, ऐसे ना सोचो कौन आएगा कौन आ रहा है, बाबा की याद में बैठो। खोलो अपना नेत्र, अलर्ट होके बैठिए और आंख खोल के बैठिए।
सफल कर लो सांसें अपनी, कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना। पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। परम पिता को